अब आकाश नाम का जो पांचवा द्रव्य है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उस आकाश का लक्षण और उस आकाश के बारे में जो है उसका क्या विशेष गुण है, क्या सामान्य गुण है, ये सब तमाम बातें जो हैं आपको बताई जाएंगी आज के पाठ में। तो इसमें कहा गया कि शब्द गुणम आकाशम, शब्द गुणम में बहुव्रीहि समास है कि शब्द गुणो यस्य तत् शब्द गुणम, शब्द है गुण जिसका उसे हम आकाश कहते हैं। शब्द है गुण जिसका, मतलब गुण का अर्थ यहाँ पर विशेष गुण लीजिए कि जिसका विशेष शब्द, जिसका विशेष गुण शब्द होता है उसी का नाम है आकाश। इसको शास्त्र की भाषा में ये कह सकते हैं कि शब्द नामक विशेष गुण का जो आश्रय है उस आश्रय को हम आकाश कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, शब्द नाम के विशेष गुण का जो आश्रय है उसे हम आकाश कहते हैं। आप ये जानते हैं कि जो गुण होता है वह गुणी पर आश्रित होता है, गुणी पर आश्रित होता है मतलब द्रव्य पर आश्रित होता है। तो शब्द जो है यह भी एक विशेष गुण है और यह विशेष गुण जिस पर आश्रित होता है, जिसमें ठहरता है, जिसमें जिस पर बैठता है उसी का नाम है आकाश। तो आकाश का विशेष गुण तो हो गया शब्द, और सामान्य गुण क्या है तो सामान्य गुण में आगे बताते हैं कि शब्द संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागवत माने इन सब गुणों से वत माने युक्त होते हैं आकाश। इसमें से पहला जो है शब्द यह तो विशेष गुण है और बाकी जो है गुण वह सामान्य गुण है, जैसे संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग और विभाग। तो ये जो पांच गुण हैं ये सामान्य गुण हो गए और शब्द नाम का जो गुण है वह आकाश का विशेष गुण है। अब ये आकाश के स्वरूप के बारे में बताते हैं, कहा कि एकम, यह जो आकाश है यह एक ही आकाश है, अनेक आकाश नहीं होता। और फिर बताया विभू नित्यम च, ये बात पहले भी आ चुकी है कि नित्य कौन होता है, जो विभू होता है। तो यह जो आकाश है यह विभू है, इसलिए यह आकाश नित्य है। आकाश को कोई बनाता नहीं है, आकाश बनता नहीं है, आकाश जो है अनारब्ध होता है। अब इसमें नित्य होने के लिए विभुत्व का होना जरूरी है, तो आकाश में भी विभुत्व है इसीलिए आकाश नित्य होता है। विभुत्व के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से आपको बता दूँ, याद दिला दूँ कि विभु मतलब होता है व्यापक, और विभु कहते हैं उसको जो जितने भी मूर्त द्रव्य हैं उन मूर्त द्रव्यों के साथ जो है एक साथ जो है सबके साथ संयोग संबंध से वह जुड़ा रहता है। जैसे आकाश जो है जितने भी द्रव्य हैं मूर्त द्रव्य, द्रव्य ही दो प्रकार के मूर्त और अमूर्त, एक द्रव्य होता है जिसकी मूर्ति होती है माने जो प्रत्यक्ष योग्य होता है, और दूसरा अमूर्त होता है जिसकी मूर्ति नहीं होती है जो कि अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर मूर्त द्रव्य की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जितने भी मूर्त द्रव्य हैं उनके साथ एक ही साथ सबके साथ जो है संयोग संबंध से वह जुड़ा होता है, जो उसी का नाम है विभू। तो आकाश भी जो है एक ही साथ समस्त मूर्त द्रव्यों के साथ संयुक्त रहता है, संयोग संबंध से युक्त रहता है, इसीलिए वह विभू है और विभू होने के कारण वह नित्य है। और यह आकाश भी जो है ये अप्रत्यक्ष है, इसका भी प्रत्यक्ष नहीं होता, आकाश दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि शून्य का नाम ही आकाश है। तो शून्य को जो है ना आँख से देख सकते हैं, ना कान से सुन सकते हैं, ना नाक से सुन सकते हैं, जो इंद्रिय के द्वारा अग्राह्य होता है उसी को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो फिर अब आकाश की सिद्धि कैसे होगी, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सिद्धि होगी नहीं, तो उसे भी हमें अनुमान प्रमाण से ही सिद्ध करना पड़ेगा। और अनुमान प्रमाण से जो जिसको सिद्ध करते हैं उसमें हेतु का होना जरूरी होता है, क्योंकि हेतु के द्वारा ही अनुमान से सिद्धि होती है। तो उस हेतु को लिंग शब्द से भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि शब्द लिंग कम आकाशम, माने आकाश की जो सिद्धि होती है वह शब्द रूपी जो विशेष गुण है उसको लिंग बना करके, उसको हेतु बना करके आकाश की सिद्धि होती है। इसीलिए कहा कि शब्द लिंग कम च, आकाश जो होता है वह शब्द लिंगक होता है, माने शब्द नामक जो विशेष गुण है आकाश का उसी को लिंग बना करके, उसी को हेतु बना करके आकाश की सिद्धि होती है। आगे कहते हैं कि शब्द लिंगत्वम अस्य कथम, ये तो बताया इन्होंने कि आकाश की सिद्धि कैसे होती है, तो शब्द लिंग से होती है। अब शब्द लिंग है, शब्द जो है लिंग है, माने इसमें आकाश की सिद्धि में शब्द हेतु है, इसमें शब्द लिंगत्व कैसे है आकाश में, इस के बारे में प्रश्न किया जाता है कि शब्द लिंगत्वम अस्य कथम, अस्य माने आकाशस्य, शब्द लिंगत्वम कथम, आकाश में शब्द लिंगत्व कथम माने केन प्रकारेण भवति, तो कहते हैं कि परिशेषात, माने परिशेषानुमान के द्वारा आकाश का शब्द लिंगत्व सिद्ध होता है। फिर से सुन लीजिए, परिशेषानुमान के द्वारा आकाश का शब्द लिंगत्व सिद्ध होता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि अनुमान तो चलिए हमने पढ़ा है, ये परिशेषानुमान क्या है? तो ये स्वयं आगे तक भाषाकार लिखते हैं, परिशेष का लक्षण बताते हैं। ये दो नंबर में बहुत पूछता है, कहते हैं कि प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात परिशिष्यमाने संप्रत्ययः परिशेषः। अब देखिए कि ये शब्द जो है यह एक विशेष गुण है आकाश का, तो जो भी गुण होता है वह कहीं कहाँ आश्रित होता है, गुणी पर आश्रित होता है। गुणी क्या किसको कहते हैं, द्रव्य को कहते हैं। तो द्रव्य कितने हैं, तो आप पीछे आपने पढ़ा है कि 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन। इनमें से के आकाश को छोड़ दीजिए तो बाकी कितने गुणी बचे, कितने द्रव्य बचे, 8 बचे। इन 8 में से दो ग्रुप बना लीजिए, दो ग्रुप बना लीजिए कौन, तो एक तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये 4 हो गए, और आत्मा, इन 5 का एक ग्रुप बनाइए, और जो बच गया कौन, काल, दिक और मन, ये 2 ग्रुप में बनाइए। तो काल, दिक और मन का एक ग्रुप हुआ, और पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आत्मा एक ग्रुप हुआ। अब बारी बारी से हम खंडन करेंगे कि शब्द नाम का जो विशेष गुण है वह पृथ्वी वाले ग्रुप में आश्रित नहीं रहता है, और यह शब्द नाम का जो विशेष गुण है ये काल, दिक और मन वाले ग्रुप पर भी आश्रित नहीं रहता है। ये खंडन करेंगे और हेतु बता करके खंडन करेंगे, युक्ति पूर्वक खंडन करेंगे। तो जब ये सिद्ध हो गया कि 9 ही द्रव्य हैं, उन 9 द्रव्यों में से 8 द्रव्य पर ये आश्रित होते नहीं है, युक्ति के द्वारा वो खंडित हो जाता है, तो फिर क्या हुआ, जो बच गया वो जो है उसी पर यह जो है शब्द नाम का विशेष गुण आश्रित होता है। तो इसमें नहीं, या इस पर आश्रित नहीं है, 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 फिर जो बच गया उस पर आश्रित है, इस तरह से जो अनुमान किया जाता है ना, इसी का नाम है परिशेषानुमान। ये मैंने समझाने के लिए कहा है। अब पंक्ति पर इसको देख लीजिए, कहते हैं कि प्रसक्त प्रतिषेध है, प्रसक्त माने प्राप्त, तो यहाँ पर जो है शब्द जो है विशेष गुण है वह किसी द्रव्य पर ही आश्रित होगा, तो उसमें जो भी प्रसक्त होगा, जो जो द्रव्य, जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य प्रसक्त हुआ माने संभावना बनी उसमें, तो प्रसक्तस्य प्रतिषेधे, जो प्रसक्त है माने पृथ्वी आदि जो द्रव्य है वो यहाँ पर प्रसक्त है माने प्राप्त है आश्रित के रूप में, लेकिन उसका प्रतिषेध है, उसका प्रतिषेध हो जाता है युक्ति के द्वारा कि नहीं उन पर आश्रित नहीं है। फिर प्रसक्त प्रतिषेध है अन्यत्र अप्रसंगात, तो जो प्रसक्त है उसका प्रतिषेध ही हो गया, और अन्यत्र जो है माने द्रव्य से भिन्न में अप्रसंगात, इसका अप्रसंग है, क्योंकि यह गुण है तो द्रव्य में ही आश्रित होगा, द्रव्य से भिन्न जो है गुण, कर्म, इन सबों में आश्रित होगा नहीं, तो जो प्राप्त है उसका प्रतिषेध हो गया, और अन्यत्र जो है अप्रसंगात, अन्यत्र जो है उसका प्रसंग नहीं है आश्रित होने का, तो फिर परिशिष्यमाने संप्रत्ययः, फिर जो परिशिष्यमान द्रव्य है, जिसका प्रतिषेध नहीं हुआ, ऐसा जो परिशिष्यमान द्रव्य है उसी में संप्रत्ययः, मान संप्रत्ययः का अर्थ यहाँ पर स्वीकार कर लीजिए कि उसी में आश्रित आश्रयत्व का स्वीकार कर लेना ही जो है यही परिशेषानुमान कहलाता है। तो परिशेषानुमान कहलाने के लिए 3 चीज़ें हुई, एक तो जहाँ जहाँ प्राप्त है उसका प्रतिषेध होता है, दूसरा अन्यत्र जो है उसका अप्रसंग होता है, उसकी संभावना नहीं रहती है, तीसरा फिर जो बच गया उसमें जो है आश्रयत्व को स्वीकार किया जाता है। इस तरह से यह परिशेषानुमान हुआ। अब इसका क्लेरिफिकेशन जो है स्पष्टीकरण आगे दे रहे हैं, कहते हैं कि तथा ही शब्दस्तावद विशेष गुण, शब्द जो है वह विशेष गुण है। विशेष गुण है मतलब किसी एक का ही जो गुण होता है ना वह विशेष गुण कहलाता है। तो शब्द आकाश का एकमात्र का गुण है इसलिए वह विशेष गुण है। अच्छा, विशेष गुण का लक्षण भी बताया आगे कि सामान्य बत्वे सति अस्मदादि बाह्यैक इंद्रिय ग्राह्यत्वात् रूपादिवत्। कहा कि शब्द जो है वह विशेष गुण है। क्यों? क्योंकि उसमें सामान्य बत्व है, माने सामान्य माने जाति, माने वह जाति का आश्रय है। और अस्मदादि माने हम लोगों का जो बाह्य इंद्रिय है, मैंने बताया था ना इंद्रिय दो प्रकार की होती है, अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय। तो मन जो है वह अंतर इंद्रिय है और आँख कान नाक ये सब जो है बाह्य इंद्रिय है। तो जो जिसमें सामान्य बत्व हो अर्थात जो जाति का आश्रय हो और एक ही बाह्य इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य हो उसको विशेष गुण माना जाता है। उदाहरण दिया रूपादिवत, जैसे रूप रस आदि की तरह। जैसे रूप है तो रूप में भी जो है सामान्य बत्व होता है और एकमात्र इंद्रिय से ग्राह्य होता है, किससे? चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य होता है, इसीलिए रूप को विशेष गुण माना जाता है। ऐसे ही शब्द में भी जो है सामान्य बत्व होता है, माने शब्द में शब्दत्व जाति रहती है और वह श्रोत्र इंद्रिय बाह्य इंद्रिय जो एकमात्र इंद्रिय है उसके द्वारा ग्राह्य होता है इसलिए वह विशेष गुण है। और गुणश्च गुणी आश्रिता एवं, आज जब शब्द ये सिद्ध हो गया कि शब्द विशेष गुण है तो ये तो मालूम ही है कि गुण जो है गुणी पर आश्रित होता है। स न च अस्य पृथिव्यादि चतुष्टयम् आत्मा च गुणी भवितुम अर्हति। इस और यह जो विशेष गुण है शब्द, इसका आशय पृथिव्यादि चतुष्टय नहीं हो सकता। मैंने ग्रुप बनाया था ना, चार पृथ्वी जल तेज वायु और आत्मा, वही यहाँ पर कहा कि पृथिव्यादि चतुष्टयम् माने पृथ्वी जल तेज वायु ये जो चारों हैं और आत्मा, ये पांचों जो है गुणी भवितुम न अर्हति, ये इसका गुणी नहीं बनेगा, ये इसका आश्रय शब्द नाम के विशेष गुण का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि श्रोत्र ग्राह्यत्वात् शब्दस्य, क्योंकि शब्द जो विशेष गुण है ये श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य है और जबकि पृथ्वी आदि जो चार हैं और आत्मा जो है इसका जो विशेष गुण है उसका विशेष गुण श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता। तो श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य शब्द है इसलिए उसका आश्रय पृथ्व्यादि चतुष्टय और आत्मा नहीं होगा। ये ही पृथ्व्यादि नाम गुणाः न ते श्रोत्रेन्द्रिय न गृह्यन्ते, पृथ्वी आदि के जो गुण होते हैं रूप आदि उसका श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता है। यथा रूपादि मन रूपादि का ग्रहण नहीं होता, शब्दस्तु श्रोत्रेन गृह्यते और शब्द का श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहण होता है इसलिए उसका आशय पृथ्व्यादि नहीं हो सकता। अब दूसरा जो ग्रुप है उसका खंडन करते हैं कि न दिक् काल मनसांग गुणः, यह जो है शब्द गुण ये दिक् काल और मन का भी नहीं हो सकता। क्यों? कि विशेष गुणत्वात् शब्द जो है यह विशेष गुण है और दिक् काल मन जो है यह कभी भी किसी विशेष गुण का आश्रय नहीं होता, यह सामान्य गुण का ही आश्रय होता है, इसीलिए शब्द नामक विशेष गुण का गुणी दिक् काल मन नहीं बनेगा। अतएव इसीलिए अस्येभ्यः अष्टभ्यः अतिरिक्तः, इन आठों द्रव्यों से जो अतिरिक्त बच गया कौन? आकाश, वही जो है शब्द गुणी एषितव्यः, उसी को शब्द नाम के गुण का आश्रय एषितव्यः माने समझना चाहिए या मानना चाहिए। सैव आकाश, और वही जो गुणी है जिस पर शब्द गुण आश्रित होता है वही आकाश होता है। स च एको, वह जो आकाश है वह एक ही आकाश होता है, अनेक आकाश नहीं होता, क्योंकि उसके भेद में माने अनेकत्व में प्रमाणाभावात कोई प्रमाण नहीं मिलता है। एकत्वे नैव उपपत्ते है, और एक मानने से ही जो है उपपत्ति भी होती है, क्योंकि अगर हम आकाश को एक मानते हैं तो क्या होता है कि यहाँ जो बोले जाने वाला शब्द है वह दूर में भी सुनाई पड़ता है। अगर हम एक आकाश नहीं मानेंगे, अनेक आकाश मानेंगे, तो जहाँ पर शब्द बोला जाएगा वहीं सुनाई देगा, दूसरी जगह सुनाई नहीं देगा, क्योंकि नियम है कि जहाँ पर कार्य की उत्पत्ति होती है उसी देश में कार्य रहता है, अन्य देश में कार्य नहीं रहता। जहाँ घड़ा बनता हो, जहाँ फैक्ट्री में जो सामान बनता हो उसी फैक्ट्री में वो सामान मिलता है, दूसरी जगह तो मिलता नहीं है। तो इसी तरह से आकाश को अगर हम अनेक मान लेंगे तो दूर में जो है वह शब्द सुनाई नहीं देगा। इसीलिए कहा एकत्वेनेव उपपत्ति, माने आकाश को एक मानने पर ही जो है यह उपपत्ति होती है, माने यह सिद्ध संभव हो पाता है कि एक जगह का शब्द जो है दूसरी जगह सुनाई देता है। आगे कहते हैं कि एकत्व अच्छा, और आकाश में चूंकि एकत्व होता है इसीलिए आकाश में आकाशत्व नाम की जाति नहीं रहती है। ऐसा है, जो जाति होती है ना वो अनेक में रहने वाला धर्म है। चूंकि आकाश जो है एक है तो उसमें जाति नहीं रह सकती, क्योंकि अनेक अनेकत्व का अभाव है। इसीलिए कहा कि एकत्वाच्चा, माने आकाश में एकत्व रहता है, इसीलिए आकाशत्वम नाम सामान्यम आकाशे न विद्यते। आकाशत्व नाम का जो सामान्य माने जाति है, आकाशत्व जाति, वह आकाशे न विद्यते, वह आकाश में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि सामान्यस्य अनेक वृत्तित्वात्, जो सामान्य है माने जो जाति है वह अनेक वृत्ति होती है, माने अनेक में वर्तमान होती है, अनेक में विद्यमान होती है। यहाँ जो आकाशत्व जाति है वह आकाश चूंकि एक है इसलिए उसमें आकाशत्व जाति नहीं रहती है। अर्थात न्याय दर्शन में आकाशत्व को जाति नहीं माना गया है। फिर आगे कहते हैं विभु च आकाशम, और यह जो आकाश है यह विभु है, अर्थात एक ही साथ सारे मूर्त द्रव्यों के साथ इनका संयोग संबंध होता है। परम महत्व परिमाणम इत्यर्थ, और ऐसा तभी संभव है जब इसका की परम महत्व परिमाण माना जाएगा, माने यहाँ से लेकर के अमेरिका तक परिमाण माना जाएगा, तभी यहाँ से लेकर के अमेरिका तक की वस्तुओं के साथ आकाश का संयोग हो पाएगा। देखते हैं ना, हवाई जहाज उड़ता है, यहाँ से उड़ करके और चला जाता है अमेरिका तक चला जाता है, कैसे आकाश में ही तो उड़ता है, तो यहाँ भी आकाश है, अमेरिका में भी आकाश है, बीच में भी आकाश है। ऐसा कब संभव है? जब उसका परिमाण जो होगा वो परम महत्व परिमाण होगा। वही कहा कि सर्वत्र तत्कार्य उपलब्धे है, हर जगह जो है आकाश का कार्य जो है वह उपलब्ध होता है, और उस उपलब्धि से ये सिद्ध होता है कि आकाश का परिमाण जो है वह परम महत्व परिमाण है और वह विभु है। अतएव विभुत्वात् नित्यम, और विभु होने के कारण ही जो है आकाश को नित्य माना गया है। इस तरह से अभी तक जितने भी द्रव्य आपने पढ़े थे, पृथ्वी जल तेज वायु, इन चारों में नित्य भी होता था अनित्य भी होता था, लेकिन यह जो है आकाश नाम का द्रव्य यह केवल नित्य ही होता है, यह अनित्य नहीं होता। और आगे भी जो आने वाले हैं ये दिक् काल, इसको भी जो है ना न्याय दर्शन में नित्य ही माना गया है। तो अगले पाठ में हम बाकी द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, आज का यहीं रखते हैं।